समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
व्यवहार वो दर्पण है जिसमें अहंकार और संस्कार दोनों की ही झलक स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। इसीलिए सभी के प्रति अपने व्यवहार में प्रेम और करुणा रखें, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है। इन्हीं सुविचारों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी FM गोल्ड ऑन 100.1 MHz एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, लाइक मुकेश सेड दैट दिस इज आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू टिल 8 o'clock। स्टे ट्यून्ड एंड गेट रेडी फॉर ऑल द अपडेट्स। टुडे इज सैटरडे, टुडे इज 9th ऑफ मे, एन एक्सट्रीमली स्पेशल डे। व्हाई इज इट स्पेशल? वी लेट you know, and the weekend is here, so you have multiple reasons to celebrate.
बिल्कुल.
Let's begin our program with the news headlines.
जी, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक में कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उधर तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने TVK को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल TVK प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के को समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। अगर बात करें हम असम की, तो भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार राज्य में लगातार तीसरी बार बनने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता के नाम की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा।
Union Home Minister Amit Shah has said that the BJP government in West Bengal will secure India's borders and plug biggest hole in national security. In his address to newly elected West Bengal BJP MLAs in Kolkata yesterday, Mr. Shah said the BJP's victory is not about the expansion of our organization or validation of ideology. It is about fixing the biggest hole in the country's national security. He said that with BJP governments in Assam, Tripura and now West Bengal, we will turn the border into an impregnable fortress. Moving on, the United States has announced sanctions against 10 individuals and companies, including several in China and Hong Kong, over accusations that they aided Iran's efforts to secure weapons and the raw materials needed to build its drones and ballistic missiles. We have a report.
The U.S. Treasury's last night move comes days before U.S. President Donald Trump plans to travel to China for a meeting with President Xi Jinping and as efforts to end the war with Iran have stalled. In a statement, U.S. Treasury said it remains ready to take economic action against Iran's military industrial base to prevent Tehran from reconstituting its production capacity. Treasury said it is also prepared to act against any foreign company supporting illicit Iranian commerce, including airlines, and could impose secondary sanctions sanctions on foreign financial institutions that aid Iran's efforts, including those connected to China's independent teapot oil refineries. Experts say Treasury's actions were aimed at cracking down on Iran's ability to threaten ships operating in the Strait of Hormuz and regional allies. Iran shut the Strait of Hormuz, a narrow choke point between Iran and Oman, through which a fifth of the world's crude oil and liquefied natural gas passes, after the US and Israel attacked a large number of targets in Iran on February 28. Shipping through the crucial waterway has ground to a near halt since the war began, sending energy prices sharply higher. Iran is a major drone manufacturer and has the industrial capacity to produce around 10,000 a month. आशीष अब्राहम फॉर आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
और अगर श्रोताओं बात करें खेलों की तो आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 8 विकेट पर 142 रन बनाए। कोलकाता ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा।
And in football, India scripted history by qualifying for the quarterfinals of the AFC Under-17 Women's Asian Cup for the first time with a commanding 4-0 victory against Lebanon in their final Group B fixture in China yesterday. For India, Pritika Burman in 7th and 85th, Alva Devi Senjum in 36th and Joya in 72nd minute scored goals. Reaching the semi-finals of this tournament would guarantee India a spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup.
और अब रुख करते हैं महानगरों की खबरों का। तो इस कड़ी में सबसे पहले बात दिल्ली के समाचारों की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल राजधानी के सभी सरकारी स्कूलों का व्यापक स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य स्कूलों में कमियों और जरूरी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कई सरकारी स्कूल 40 से 50 वर्ष पुराने हैं और लगभग 700 स्कूलों में बड़े स्तर पर पुनर्विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस ऑडिट के माध्यम से इन स्कूलों के भवनों की मजबूती, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, स्वच्छता और फायर सेफ्टी जैसी मूलभूत सुविधाओं की जांच की जाएगी। और दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद तालाब में यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों में जल उत्पादन लगभग 40-50% तक प्रभावित हुआ है। इसके चलते स्थिति सामान्य होने तक कई क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। प्रभावित क्षेत्रों में ITO, डिफेंस कॉलोनी, राजघाट, तिमारपुर, पंजाबी बाग, शालीमार बाग, मॉडल टाउन, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी, करोल बाग, सिविल लाइंस, पटेल नगर और आसपास के इलाके शामिल हैं। नागरिक आपातकाल स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। और दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों और रिमेडियल क्लास को लेकर सर्कुलर जारी किया है। आदेश के अनुसार दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। वहीं अवकाश के दौरान कक्षा 9वीं और 10वीं तथा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 मई से 23 मई तक विशेष रिमेडियल क्लास आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों के लिए इन कक्षाओं का समय सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इनमें प्रत्येक पीरियड 1 घंटे का होगा।
And moving towards Chennai, the Indian Institute of Technology Madras Global Research Foundation has announced the establishment of its first U.S. center in Menlo Park, California at the Select USA Investment Summit on 6th of May. Launched on April 24, 2026, in partnership with CA Startups, the center represents a strategic shift towards taking Indian deep tech research and startups directly to global innovation hubs. The initiative involves a planned investment of $7.5 million, including a $4.5 million greenfield investment from IIT Madras. Speaking about the Park Center, Professor V. Kamakoti, Director, IIT Madras and Chairman of IIT Madras Global, said that this expansion represented a natural progression of our vision to take Indian research to the global stage, enabling deeper collaboration with global industry and venture ecosystems.
और अगर बात करें मुंबई की खबरों का, तो महाराष्ट्र सरकार ने 14 लेन वाले विगार अलीबाग मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के पहले चरण के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस कॉरिडोर से मुंबई में यातायात की समस्या में सुगमता होगी। और महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने मुंबई हाउसिंग सोसाइटियों को अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इंडेक्स शुल्क के बिना अवकाश और सुविधाओं का विस्तार करने की भी अनुमति प्रदान की है।
And moving towards Bangalore, the Bangalore Water Supply and Sewerage Board, BWSSB, has intensified its crackdown on illegal water and sewerage connections through its special Blue Force squads, inspecting 54,625 buildings across Bangalore over the past 5 months. During the drive, BWSSB disconnected 11,217 unauthorized connections, including 9,751 drinking water and 1,466 sewerage connections. The East Zone recorded the highest number of disconnections, while the South Zone saw the highest inspections. And about some more news from Bangalore itself, elections to the 5 corporations under the Greater Bangalore Authority, GBA, are likely to be held between June 14th and 24th, State Election Commissioner G.S. Sangareshi said on Friday. Addressing the media, Mr. Sangareshi said that there would be no delay in conducting the polls, as the Supreme Court has directed the State Election Commission to submit a compliance report by 30th of June.
और अब बात कार्यक्रम आज सवेरे में महानगरों के मौसम का हाल जानने की। इधर राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में भी आज आसमान साफ रहेगा। शहर में आज न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या गरज के साथ तूफान की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
And Chennai is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Bangalore is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and the maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of development of thunder lightning. The temperature will hover somewhere between a minimum of 27 degrees and a maximum of 39 degrees Celsius. Now, we have a special report for all of you on the forthcoming National Lok Adalat being organized on 9th of May 2026. We have an excerpt from an interview with Sanjeev Pandey, Member Secretary, the National Legal Services Authority, NALSA.
आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो लंबे समय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आज 9 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे। आज 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को विशेष क्यों माना जा रहा है?
आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका आयोजन स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका लेवल पे तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। इसमें न्यायालय में लंबित मामले व प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
लोक अदालतों में सामान्यतः किस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है?
लोक अदालत में सिविल केस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, चेक बाउंस के केस, श्रम विभाग के बिजली पानी, इसके अलावा ट्रैफिक चालान के केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस और प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसी प्रकार से लोक अदालत में समझौता योग्य क्रिमिनल ऑफेंसेस का भी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है।
लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसलों की कानूनी मान्यता क्या होती है? क्या ये निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी माने जाते हैं?
जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोक अदालत में जो मामले लगाए जाते हैं उनका निस्तारण समझौते के आधार पर किया जाता है। समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।
जी
ये पार्टीज पर
बिल्कुल
बाइंडिंग होता है और इसके विरुद्ध कोई भी अपील योजित नहीं की जा सकती है। यदि कोई मामला लोक अदालत में लगाया गया है और उसमें समझौता ना हो सके तो मामले को न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है।
क्या वर्तमान समय में डिजिटल या ऑनलाइन लोक अदालतों की व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं?
ई लोक अदालत को पूरे देश भर में स्थापित किया जा रहा है। मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड दूंगा। वर्ष 2020 में सबसे पहले ई लोक अदालत मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। इस समय ये देश के 27 राज्यों में स्थापित की जा चुकी है। अभी तक ई लोक अदालत में 1,34,00,000 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। इसमें लगभग 1,20,00,000 मामले प्री लिटिगेशन के हैं और बाकी मामले न्यायालय में लंबित मामले हैं। ई लोक अदालत का सबसे बड़ा बेनिफिट पक्षकार को ये होता है कि अगर वह कोई दुर्गम क्षेत्र में रह रहा है और जहां लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जहां पे वो रहता है उससे बहुत दूर है, तो वह ऑनलाइन ज्वाइन करके लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। उसका समय बचता है। अगर वो जो वो अपना काम कर रहा है उसके लिए उसको टाइम मिल जाता है। उसका सारा दिन इस काम के लिए खराब नहीं होता कि उसको लोक अदालत जाके अपने मामले का निस्तारण कराना पड़े।
लोक अदालत के बारे में इतना विस्तार से बताने के लिए धन्यवाद।
And before we move further, we have an update from Hyderabad Metro. Telangana Minister N. Uttam Kumar Reddy delivered the keynote address at the MSME Spark 3.0 conference in Hyderabad yesterday. He highlighted how the state's aerospace and defense sector is witnessing over 30% annual growth, with exports rising at 103% CAGR between 2024 and 26. More than 1,500 MSMEs are active in the state's defense supply chain, and India has transformed from importing arms to exporting defense equipment to over 100 countries, with exports surging 34 times from 686 crore rupees to 23,622 crore rupees. The minister declared that Hyderabad is co-authoring India's defense story. And moving further, let's talk about this particular day, 9th of May. How is this day special and what all happened on this day? Let's go back and talk about the year 1502, when Christopher Columbus left Spain on his final trip to the New World. And in 1868, the city of Reno, Nevada was founded.
1901 में मेलबर्न में पहली ऑस्ट्रेलियाई संसद का उद्घाटन हुआ था।
In 1914, American President Woodrow Wilson issued a presidential proclamation that officially established the first national Mother's Day holiday to celebrate America's mothers. And in 1915, the Battle of Arthur began between France and Germany.
और 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने विजय दिवस मनाया था।
In 1950, French Foreign Minister Robert Schuman presented his historic proposal for an integrated European coal and steel community. This year, the European Union celebrates the 75th anniversary of the Schuman Declaration as Europe Day and the 25th anniversary of the EU's motto, United in Diversity.
इसके एक दशक बाद यानी कि 1960 में अमेरिका गर्भ निरोधक गोली को वैध बनाने वाला पहला देश बना।
In 1971, Jack Klugman and Jean Stapleton won an Emmy Award for All in the Family at the 23rd Emmy Awards.
और अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भाऊराव पाटिल को। आज उनकी पुण्यतिथि है। भाऊराव रायात एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। वे महाराष्ट्र में एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक थे। भाऊराव का सिद्धांत था अर्न एंड लर्न, यानी कमाओ और सीखो। अपने इसी सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने कम आय वाले पिछड़ों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महात्मा ज्योतिबा राव फुले द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज के एक प्रमुख सदस्य भी थे। उनके कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और श्रोताओं, आज ही के दिन भारतीय शिक्षाविद कर्मशी जेठाभाई सोमैया ने भी हमें अलविदा कहा था। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है। उन्होंने महाराष्ट्र में कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। वर्ष 2000 में सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Today is the death anniversary of Lena Horne, an American singer, actress, dancer, and civil rights activist. Her career spanned more than 70 years and covered film, television, and even theater. Before I talk further about her, let's enjoy a track by her.
Don't know why. sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Life is bad.
We're talking about Lena Horne. She announced her retirement in March 1980, but the next year starred in a one-woman show, Lena Horne, The Lady and Her Music, which ran for more than 300 performances on Broadway, and then she toured the country in the show, earning numerous awards and accolades. She continued recording and performing amazingly in the 1990s, withdrawing from the public eye in 2000.
आज पुण्यतिथि है तेंजिंग नोर्गे की. उन्हें शेरपा तेंजिंग के नाम से भी जाना जाता है. वे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले भारतीय थे. उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पर्वतारोही एडमंड हिलेरी के साथ 29 मार्च 1953 को 8,848 मीटर ऊंचाई वाले पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की. भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1959 में पद्म भूषण से सम्मानित किया. 1954 में हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की दार्जिलिंग में स्थापना की गई और तेंजिंग नोर्गे उसमें निदेशक बने. उनका निकनेम टाइगर ऑफ स्नोज भी रखा गया.
And today is the death anniversary of Keith Whiteley, an American country music and bluegrass singer and even songwriter. During his career, he released only 2 albums but charted 12 singles on the Billboard country charts and 7 more after his death. His first top 20 country hit single, Miami, My Amy, was released in 1986. Let's enjoy a track by him titled When You Say Nothing At All.
The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Now you say it best when you say nothing.
We're talking about Keith Whiteley here. In 1988, his first 3 singles from his second album, Don't Close Your Eyes, the title song was the one you just heard, When You Say Nothing At All, and also I'm No Stranger to the Rain. And his other famous songs are I'm Over You and It Ain't Nothing. They were released as singles after his death.
आज पुण्यतिथि है लोकप्रिय पार्श्वगायक तलत महमूद की. हालांकि उन्होंने फिल्म अभिनेता के रूप में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें अभिनय में सफलता नहीं मिली. शुरुआत में तो उन्हें मुंबई में कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बाद में मुंबई में प्रदर्शित फिल्म राखी, अनमोल रतन और आरजू से उनके करियर को विशेष चमक मिली. फिल्म आरजू की गजल ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो ने अपार सफलता हासिल की.
जगा ले जहाँ कोई ना हो अपना कराया मेहरबाना मेहरबान कोई ना हो
यहीं से तलत और दिलीप कुमार का अनूठा संयोग बना जो कई फिल्मों में दोहराया गया. तलत महमूद ने हिंदी की 13 फिल्मों और 3 बांग्ला फिल्मों में अभिनय किया. उन्होंने 17 भारतीय भाषाओं में गाने गाए. मशहूर संगीतकार नौशाद ने भी तलत को फिल्म बाबुल के लिए गाने का मौका दिया. अभिनेता दिलीप कुमार पर फिल्माया गया उनका गाना मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का बहुत सराहा गया है.
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का
मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का
अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का
अफसाना मेरा.
Today is the birthday of not just one, but two amazing personalities, and they work in Telugu cinema. And the names of these amazing celebrities are Sai Pallavi and Vijay Devarakonda. Vijay is an Indian actor and film producer who works in Telugu films, and Sai Pallavi is an Indian actress who primarily works in Telugu as well as Tamil cinema. If we talk about Sai Pallavi, Pallavi has starred in amazing films, be it Love Story, then Gargi, Amaran, Middle Class Abai, and many more. Her song Rowdy Baby is the first South Indian video song to reach 1 billion views on YouTube, and her performances in Amaran, Love Story earned the film Fair Award for Best Actress in Tamil and Telugu. So let's hear a song which has been picturized on both these actors, and this is from the movie Love Story, which came in 2021. And if we talk about Vijay Devarakonda, if you have seen the movie Kabir Singh in Hindi, this was the Hindi remake of the film Arjun Reddy, which was a Telugu film starring Vijay himself. So these are the two people whose birthdays are today.
और श्रोताओं, आज जयंती है माँ भारती के शूरवीर योद्धा महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। वे उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वे तिथि धन्य है जब मेवाड़ की शौर्य भूमि पर मेवाड़ मुकुटमणि राजा प्रताप का जन्म हुआ। वे अकेले ऐसे वीर थे जिन्होंने किसी भी तरह से मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी से संबंधित एक मारवाड़ी में कविता है कि हूँ रजपूतण रो जायो, रजपूती करज चुकाऊला, ओ सीस पड़े पण पाग नहीं दिल्ली रो मान झुकाऊला, जद राणा रो संदेश गयो पीथड़री छाती दूनी ही, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो अकबररी दुनिया सुनी ही। ये शब्द हैं कन्हैया लाल सेठिया के।
And if we talk about Maharana Pratap, the program will end and we need a lot more time. So
जी,
it's
बिल्कुल.
Endless. Some a lot more important facts about him was he was 7 feet and 5 inches. He used to carry an 80 kilogram spear and two swords weighing around 208 kilograms in total. He would also wear an armor weighing 72 kilograms and he is widely regarded as India's first native freedom fighter. And it was his dream to free Chittor, and so he made a pledge that he would eat in a leaf plate and sleep on a bed of straws until he doesn't win Chittor back. Even today, some Rajputs place a leaf under their plate and straw under their bed in the honor of the legendary nobody else but Maharana Pratap.
Ji bilkul, isi se sambandhit apni kavita mein Peetal aur Pathal mein Kanhaiya Lal Sethia likhte hain, are ghansri roti jad ban bilawad lole bhagyo, नानो रो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो।
And our next personality in this list is Mallika Sarabhai. Today is her birthday. An Indian classical dancer, activist and actress from Ahmedabad, Gujarat, India. And she is the daughter of classical dancer Mrinalini Sarabhai and the space scientist Vikram Sarabhai. She is an accomplished Kuchipudi and Bharatnatyam dancer and performer who has specialized in using the arts for a social change and transformation. And through a communications, she has been responsible for the production of 3,000 hours of TV broadcast programming, all of which has been shown through Doordarshan Gujarati, and she has anchored multiple shows on Doordarshan Gujarati.
श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपके बेहतर दिन की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए मुकेश और तन्वी को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a wonderful day.
नमस्कार।